हरे श्री श्री गौरताय श्री श्री सीताराम कृष्ण हनुमान की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय तो प्रतिदिन की भांति आज भी हम श्रीमद् भागवत पर चर्चा करेंगे। आज का विषय है श्रीमद् भागवत स्कंद 10 अध्याय 10 यमलार्जुन वृक्षों का उद्धार श्लोक संख्या 37। अनुजानी नौ भूमंस तवानुचर किंकरौ दर्शनम नौ भगवता ऋषेर आसीद अनुग्रहात् अनुजानी नौ भूमंस तवानुचर किंकरौ दर्शनम नौ भगवता ऋषिरासीदनुग्रहात् अनुजानीहि नौ भूमंस तवानुचर किंकरौ दर्शनम नौ भगवता ऋषिरासीदनुग्रहात् जी शब्दार्थ अनुजानी ही आप अनुमति दें नौ हमें भूमन हे विराट रूप तब अनुचर किंकरो हम आपके विश्वस्त भक्त नारद मुनि के दास हैं दर्शनम साक्षात देखने के लिए नौ हमारा भगवतः आपका ऋषेह नारद ऋषि का आसीत था शाप के रूप में अनुग्रहात कृपा से अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमती एसी भक्तिदान स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। हे परम रूप हम सदैव आपके दासों के विशेष रूप से नारद मुनि के दास हैं अब आप हमें अपने घर जाने की अनुमति दें। यह तो नारद मुनि की कृपा है कि हम आपका साक्षात दर्शन कर सके। अनुवाद कृपा पीछे दोहराइए। हे परम रूप, हम सदैव आपके दासों के विशेष रूप से नारद मुनि के दास हैं। अब आप हमें अपने घर जाने की अनुमति दें। यह तो नारद मुनि की कृपा है कि हम आपका साक्षात दर्शन कर सके। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा बड़ा महत्वपूर्ण तात्पर्य है। भक्त का आशीर्वाद पाए बिना मनुष्य को अनुभूति नहीं हो पाती कि कृष्ण भगवान है। इसी विषय पे पूरा तात्पर्य रहेगा। ये जो पूरी लाइन है, इसी पूरी लाइन को ही प्रभुपाद जी व्याख्या करें पूरे तात्पर्य में। यही दो बात तो देखते हैं, हम आपसे पूछेंगे तात्पर्य के अंत में कि क्या प्रभुपाद जी तात्पर्य में मुख्य दो बात बोल रहे हैं या एक ही बात बोल रहे हैं। देखते हैं कौन ध्यान से देखता है तात्पर्य प्रभुपाद जी का। मनुष्यानाम सहस्त्रेशु कश्चित यदि सिद्धये, भगवत गीता के श्लोक 7:3 के अनुसार ऐसे अनेक सिद्धया योगी हैं जो कृष्ण को नहीं समझ पाते, उल्टे वे उनका गलत अर्थ निकालते हैं। किंतु यदि नारद की परंपरा से चले आ रहे स्वयंभूर नारद शंभु भक्त की शरण ग्रहण की जाए तो यह समझ में आ सकता है कि कौन व्यक्ति भगवान का अवतार है। इस युग में अनेक छन्न अवतार इसलिए विज्ञापित किए जाते हैं कि वे कुछ जादूगरी दिखला चुके हैं, किंतु नारद के दासों तथा कृष्ण के अन्य दासों के अतिरिक्त अन्य कोई भी यह नहीं समझ सकता कि कौन ईश्वर है और कौन नहीं है। इसकी पुष्टि नरोत्तम दास ठाकुर ने की है, छाड़िया वैष्णव सेवन स्तर पये छेवा। जब तक किसी वैष्णव की कृपा नहीं होती तब तक जीवन के भौतिक बोध से कोई छुटकारा नहीं पा सकता। अन्य लोग न तो कल्पना से न ही शारीरिक या मानसिक आसनों से कभी समझ सकेंगे। श्री प्रभुपाद की ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सुपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविदान स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियै। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्वाहं दरिद्र पापीयान् क्व कृष्ण श्री निकेतनः ब्रह्म बंधुरिति स्माहं बाहुभ्यां परिरंभितः। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम हम महाराज जी के चरण कमलों में प्रार्थना करेंगे कि महाराज आशीर्वाद दें ताकि हम ये सेवा भक्तों की प्रसन्नता के लिए, श्री प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए सेवा कर पाएं। मेरा तो कोई योग्यता नहीं है यहाँ पर विराजमान होने का, और इतने सारे संत महंत विराजमान हैं सभा में, सबके चरणों प्रणाम है। मेरी इतनी योग्यता है कि आज का सुबह का कार्यक्रम संपूर्ण कर लिया मैंने। पूरा प्रभुपाद जी गुरु पूजा तक सब सोला माला सब कर ली। इतना योग्यता है बस, और कोई योग्यता नहीं है। सब भक्तों के चरणों प्रार्थना करते हैं कि आप आशीर्वाद देंगे ताकि हम ये सेवा श्रील प्रभुपाद जी और नित्यानंद प्रभु की प्रसन्नता के लिए ये सेवा हम कर पाए। हरे कृष्ण। तो बड़ा सुंदर प्रसंग चल रहा है। बहुत ही आनंदमय प्रसंग चल रहा है जिससे हम अपने जीवन के तादात्म्य कर सकते हैं और आनंद पूर्ण शिक्षाएं ले सकते हैं। तो दशमा स्कंद चल रहा है, परीक्षित महाराज अभी पूरी सावधानी से विराजमान है, कुछ खाए पिए नहीं है 4-5 दिन से। परीक्षित महाराज ने हमने तो खाया है और उसके बावजूद ही परीक्षित महाराज पूरी रुचि से बैठे हैं। और तो लीला तो आपको पता ही है, नलकुवर मणिग्रीव, अमीर बाप के बिगड़े बेटे ऐसे बोलते हैं आजकल तो और उनका कॉन्टैक्ट्स भी थे अच्छे खासे शिव जी के साथ में, तो वो ऐसे। तो हम आज की चर्चा 3 भाग में करेंगे। पहले तो जो प्रसंग चल रहा है उसमें से कुछ दृष्टि डालने का प्रयास करेंगे, उसके बाद जो प्रभुपाद जी का तात्पर्य है तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी जो मुख्य बात कहते हैं उसको हम विस्तार से समझने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे। और अंत में फिर और बीच में भी आ जाएगा कि हमारे साधक जीवन में हमने क्या चीज़ें इसमें से लेनी है, है ना। तो सबसे पहले तो हम यहाँ देख सकते हैं कि काफ़ी सारे यहाँ पर भक्त जो युवा देह में हैं, और देह चाहे पुराना भी हो लेकिन उम्मीदें या आशाएं या भौतिक इच्छाएं तो फिर भी युवा हो सकती है, और यहाँ तो बहुत सारे भक्त युवा देह में विराजमान है। तो हमारे लिए एक बड़ी अच्छी शिक्षा है कि आमतौर से देखा जाए तो युवक लोग जो होते हैं वो WWW के पीछे बहुत आकर्षित रहते हैं, वेल्थ वुमेन एंड वाइन आधुनिक जगत में देख सकते हैं। तो ये जो नलकुवर मणिग्रीव थे ये लोग उनके रोल मॉडल हैं ऐसे लोगों के, क्योंकि धन के मद में, स्त्रियों के संग में और मदिरा के पान करके पूरा, है ना, ऐसे भरे बैठे थे ये लोग और उसका पूरा आनंद ले रहे थे, जो कि आजकल के सब लोग सोचते हैं यही सपना है जिंदगी का, नहीं तो ये ऑलरेडी ले रहे थे। तो ये लोग फिर अपने जीवन का साक्षात्कार बता रहे हैं, और वो भी ऐसे नहीं कि अभी पहली बार मंदिर आया और चलो ओ क्या बात है, नहीं, है ना, सत्संग करके उसके बाद 100 साल खड़े नंद बाबा के आंगन में, हमारे वाले 100 साल नहीं, देवताओं वाले 100 साल, मेरे ख्याल से कितना, 1 दिन 1 6 महीने 1 दिन होता है कुछ तो ऐसा, है ना, माने कुछ है 36,000 साल होता है ना हमारा, तो हमारा 36,000 साल के हिसाब से वो लोग खड़े हैं, और 36,000 साल में कितनी पीढ़ियां देखी होंगी उन्होंने द्वापर युग में, और कितने लोग आए गए देखे होंगे, और कितने मौसम देखे होंगे, कितने साक्षात्कार लेकर के बैठे हैं, और अब भगवान के बाल लीलाओं के दर्शन कर रहे हैं, और अब बोल रहे हैं ये 8-10 श्लोक अपनी प्रार्थना के। तो ये बड़े महत्वपूर्ण है, हजारों हजार साल की जो साक्षात्कार लेकर के ये बोल रहे हैं, हमको बड़े ध्यान से इसको श्रवण करना है। दूसरा हम देख सकते हैं प्रसंग में एक बड़ा सुंदर कि अभी 8-10 श्लोकों पहले जो प्रार्थना शुरू करते हैं दोनों नलकुवर मणिग्रीव, तो आप देखेंगे कैसे वो भगवान कृष्ण को धन्यवाद दे रहे हैं और प्रशंसा कर रहे हैं कि आपकी कृपा से ही हमारा सब कुछ इस सृष्टि में जो चल रहा है, आप ही आदि पुरुष हैं, हम तो आदि दास हैं, आदि दास आदि दास वो अच्छा एडवर्टाइजमेंट करते हैं, नहीं एडिडास, नहीं कहीं पर भी आप अभी देखें तो देखो हर जगह पर दिखता है ना वो एडिडास का जूता कपड़ा सब, तो जहां पर भी आप देखें आप स्मरण करते हैं, देखो कितना अच्छा लिखा है, हमें याद दिला रहा है कि हम आदि आदि दास है, हम आदि दास है, है ना। और आदि पुरुष कौन है, राधा रास बिहारी आदि पुरुष है, नित्यानंद प्रभु आदि पुरुष है ना, हम आदि दास है। तो अच्छे से भगवान को प्रशंसा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। तो आप देखोगे भागवत में अगर हम देखेंगे ना तो कितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, दर्जनों दर्जनों लोग, 100 लोग प्रार्थना कर रहे हैं, पर किसी को भी देख लो आप प्रार्थना करेंगे शुरुआत में पहले वो ये प्रस्तुत करेंगे, ये रखेंगे कि आप कौन है, चाहे आप छोटा यहां पर अभी बाएं हाथ में लेकर कवल वेत्र विशान वेणु मृदुपदे पशुपांग जाया ना ब्रह्मा जी दर्शन कर रहे हैं, उल्टे हाथ में खाने का भी कुछ तो सही सभ्यता होना चाहिए, भगवान उल्टे हाथ में खा रहे हो बताओ तो चाहे सामने खड़ा है बालक छोटा लाला उल्टे हाथ में खाना लेकर के, उसको भी ब्रह्मा जी कह रहे हैं अपनी मति को स्मरण करवा रहा हूं मैं कि आप कौन है, आप छोटे लाला नहीं है जो उल्टे हाथ में लेकर खा रहे हैं, है ना, नौमिड्यत ब्रभुषे तरिडंबराया गुंजावतम सपरिपित छलसन मुखाया। आबादी पुरुष भगवान स्वयं है, ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बार बार अपने आप को याद दिला रहे हैं ना। सारे हम प्रार्थना दे सकते हैं, सब लोग अपने आप को पहले याद दिला रहे हैं कि ये कौन खड़े हैं। पहले तो अपना मति ठीक कर लो, अपना अंदर का वाइब्रेशन, जो अपना एटमोसफियर है अंदर का, वो ठीक कर लो कि कौन है सामने, उसके बाद प्रार्थना निकलेगी। तो पहले तो ये करें नलकुर मणिग्रीव भी कि आप आदि पुरुष हैं, आपसे सब कुछ सृष्टि आई है, सब कुछ आप पे टिका है वगैरह वगैरह, बड़ा परफेक्ट। और साथ ही साथ वो इस श्लोक में, अगले श्लोक में नारद मुनि के चरणों में भी आश्रित हैं, अपने गुरु के चरणों में। तो ये भी हमें दूसरी चीज प्रसंग से देखने को मिलती है कि कोई भी सच्चा साधक होगा, कोई भी प्रगतिशील भक्त होगा, वो गुरु और कृष्ण दोनों के चरणों में पूरी तरह से आश्रित होगा। ऐसा नहीं कि उन्होंने इतने भाव में आ गए कि गुरु नारद मुनि की प्रशंसा करते रहे, ये कुछ समझ नहीं आ रहा उनकी चेतना में कि कृष्ण भगवान है नहीं है, समझ में आया नहीं आया तुम्हें, नहीं। पहले कृष्ण भगवान की प्रशंसा की, क्योंकि आजकल के समाज में हम देखते हैं ऐसे कुछ लोग हैं जो गुरु को ही भगवान बना दिए, इतने गुरु के ऊपर इतना चले गए हैं, इतना गुरु पे फोकस डाल दिया है कि गुरु को भगवान बना दिया, कि राधा कृष्ण साइड पे है ना, आपको मालूम है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि कृष्ण को इतना कर दिया है कि गुरु की जरूरत ही नहीं है। तो इस तरफ जाओ तो आप सहजिया हो जाएंगे, इस तरफ जाओ तो मायावादी हो जाएंगे। तो इसलिए ये सही समतल, क्या कहते हैं, समन्वय है ना, गुरु और कृष्ण दोनों के चरण में। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, यस्य क्या है वो श्लोक, श्वेता शत्रु उपनिषद, नहीं नहीं दूसरा श्लोक, श्वेता शत्रु कौन सा है, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा, यथा देवे तथा, यथा गुरु यथा देवे, दोनों शब्दों में इसको पूर्ण श्रद्धा निष्ठा है, दोनों की स्थिति में, दोनों के उपदेश में वो ठीक है, उसका गाड़ी हो जाएगा। प्रकाश अंतिम आत्मा, हृदय से प्रकाशित हो जाएगा उसका दिव्य ज्ञान, हृदय प्रकाशित उसको हो जाएगा। तो ये दूसरी चीज हम सीखने को मिलती है। तीसरी एक और विचार करते हैं, विचार आता है कि नारद मुनि तो मृगारी को भी मिले, नारद मुनि तो नरकुल मणिगिरी को भी मिले। मृगारी को तो 2 मिनट में हरिनाम देकर सेटिंग कर दिया, उद्धार कर दिया उसका, इनको हजारों हजार साल टांग दिया। प्रभुपाद जी के प्रवचन में बोलते हैं अपने जैसे छोटे बच्चों को टीचर क्लास में खड़े करते हैं, खड़े हो जाओ बेंच पे, खड़े हो जाओ पीछे, है ना, ऐसे बोलते हैं ना, बदमाशी करते, खड़े हो जाओ। तो प्रभुपाद जी कहते ऐसे खड़ा कर दिया इन दोनों को नारद मुनि ने, वो भी कब, कितना, हजारों हजार साल तक। तो ये अंतर दिखता है ना। तो प्रभुपाद जी इसको फिर तीसरे स्कंद के विदुर मैत्र संवाद में इसको जो बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं, इसका बहुत सुंदर, हमारे भक्तों के जीवन के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से देखना प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं। मृगारी और नलकुर मणिग्रीव, इन दोनों का कंपेरिजन, क्या कहते हैं कंपेरिजन, तुलना, तुलना करके दोनों का हमको बहुत अच्छा शिक्षा दे रहे हैं साधक जीवन में प्रभुपाद जी। तो आप ध्यान से सुनिए, 8-10 लाइन है, थोड़ा आप ध्यान से सुनिए। वस्तु तीसरा स्कंद 5वां अध्याय 45 नंबर श्लोक का तात्पर्य आखिरी पैराग्राफ। वस्तुतः ऐसे अपराधी जन न तो अंतःकरण में भगवान के चरण कमलों को देख सकते हैं, न ही वे भगवत भक्तों को देख सकते हैं। प्रभुपाद जी हमें बता देता हूं पहले क्या बताने जा रहे हैं। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो अपराधी होते हैं वो भगवान को और भक्तों को भी नहीं देख पाते वो लोग। तो अपराध से बचना है, ये मुख्य सार है इस पैराग्राफ का। अब मैं पढ़ता हूं, सुनिए। भगवत भक्त इतने दयालु होते हैं कि वे लोगों को ईश चेतना से अलोकित करने के लिए सभी स्थानों में घूमते रहते हैं, किंतु अपराधी जन भक्त भगवत भक्तों का स्वागत करने का अवसर खो बैठते हैं। यद्यपि अपराध रहित सामान्य जन भक्तों की उपस्थिति से तुरंत ही प्रभावित हो जाते हैं। ध्यान सुनना है, मैं दोबारा पढ़ता हूँ लाइन। यद्यपि अपराध रहित सामान्य जन भक्तों की उपस्थिति से तुरंत ही प्रभावित हो जाते हैं। इस संदर्भ में एक शिकारी तथा देवर्षि नारद की एक रोचक कहानी है। एक जंगल में एक शिकारी रहता था जो यद्यपि महान पापी था किंतु वह जानबूझकर अपराध नहीं किया करता था। वह नारद की उपस्थिति से तत्काल प्रभावित हुआ और अपना घर बार छोड़कर भक्ति मार्ग स्वीकार करने को राजी हो गया। किंतु नलकुवर तथा मणिग्रीव अपराधियों को देवताओं के बीच में रहते हुए भी अगले जन्म में वृक्ष बनने का दंड भोगना पड़ा। यद्यपि एक भक्त की कृपा से बाद में भगवान ने उनका उद्धार कर दिया। अपराधियों को तब तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है जब तक उन्हें भक्तों की कृपा प्राप्त न हो ले, तब वे अपने अंतःकरण में भगवान के चरण कमलों का दर्शन करने का पात्र बन जाते हैं। किंतु अपने अपराधों तथा अपने नितांत भौतिकतावाद के कारण वे भगवत भक्तों तक का दर्शन नहीं कर पाते। बाह्य कार्यों में व्यस्त रहने से वे अपनी अंतःदृष्टि का हनन कर डालते हैं, फिर भी भगवत भक्त उन मूर्खों के अपराधों पर ध्यान नहीं देते जो अनेक स्थूल तथा सूक्ष्म शारीरिक प्रयासों में लगे रहने के कारण सोते रहते हैं। भगवत भक्त ऐसे समस्त अपराधियों को बिना हिचक के भक्ति का आशीर्वाद देते रहते हैं। भक्तों का यही स्वभाव है। तो प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं, बड़ा महत्वपूर्ण समझा रहे हैं। श्री श्री राधा रस बिहारी श्री श्री गौर निताय श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की राज गोवर्धन की सर्वशिला की श्रील प्रभुपाद की भगवान प्रकट हो गए। प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं इस प्रसंग के बारे में, एक चीज और कि जो सामान्य जन है इस संसार के, वो भक्तों की संगति से प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन जिन्होंने अपराध किए हैं गुरु कृष्ण के प्रति वैष्णवों के प्रति, वो चाह करके भी नहीं लाभ उठा पाते भक्तों का या भगवान का। तो इसलिए हमको शिक्षा मिलती है कि हमने अपराधों से बच के चलना है जीवन में। बहुत मुझे याद है परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज, जब भी ये विषय आता है तो कुछ उनके फिक्स हैं जो वो बोलेंगे ही। एक है वो सची माता का अपराध अयोध्याचार्य के चरणों में जो हुआ, उसके बारे में महाराज समझाने के लिए कैसे भक्तों ने अपराध से बचना चाहिए। तो बहुत साल पहले एक बार महाराज से मायापुर में पूछा गया परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज से कि महाराज आपकी इतनी सुदृढ़ भक्ति है, इतनी महान सेवा है इतने सालों की दशकों की, इसका क्या राज है। तो महाराज का प्रभुपाद जी कृपा है मुख्य, अगर आप कहें तो एक इतना ही कहना चाहता हूँ कि स्ट्रांग मॉर्निंग प्रोग्राम एंड अवॉइडिंग वैष्णव अपराध। अगर मैंने कुछ किया है तो बस यही दो चीज करने का प्रयास किया है, अपना मॉर्निंग प्रोग्राम दृढ़तापूर्वक रखा है और वैष्णव अपराध से बचने का प्रयास किया है। और ये सच भी है, हमने अपनी आंख से देखा एक बार यहीं पर ही जहाँ पीछे भक्त हल्दर कृपा प्रभु बैठे हमारे, तो यहीं पर एक बार महाराज तुलसी में जल डालने के बाद में उधर बैठने के लिए जा रहे थे जप करने के लिए। जब जा रहे थे तब तक भक्त लोग वृंदा देवी को प्रणाम करने लगे, है ना, वृंदा आये देवे तुलसी में। तो महाराज जाते जाते किसी भक्त का जो है उसका हाथ ऐसे ना ऐसे हाथ किया था प्रणाम, तो हाथ महाराज को टच हो गया उनके महाराज के चरणों को, उसका तो कृपा हो गया। पर महाराज को लोग अरे अरे अपराध हो गया। तो महाराज वहां खड़े रहेगी, अभी ये वृंदा आये करके उठेगा तो उसको सॉरी बोल के फिर जाऊंगा। पर जो वृंदाये चल रहा था वो बहुत धीरे धीरे गा गा के कर रहे थे वृंदाये तुलसी देव ये तो बहुत समय लग रहा था। तो महाराज काफी देर तक खड़े रहे महाराज कि अभी उठेगा। इसको तो अभी मैं होता तो ऐसे करके निकल जाता था, अभी ठीक है समझ जाएगा वो। लेकिन महाराज खड़े रहे कि जब उठेगा तब इसको टच करके ऐसे करके फिर जाऊंगा क्षमा मांग के। महाराज खड़े रहे और बहुत देर तक खड़े रहे महाराज। उसके बाद फिर दामोदर गौर हरि प्रभु हमारे विराजमान है, तो दामोदर गौर हरिप्रभु को महाराज ने बोला कि अच्छा देखो मैं जा रहा हूँ उधर, इसको आप बोलना महाराज सॉरी बोल रहे थे, ठीक है। तो बोले हाँ महाराज। फिर वो भक्त उठा तो उसको बोला दामोदर गौर हरिप्रभु ने, बोला प्रभु जी क्या क्षमा कृपा होगी महाराज की। फिर दामोदर गौर हरिप्रभु अपने जागे उधर बैठ के जब करने लगे, थोड़ी देर बाद महाराज ने अपना गायत्री कर लिया, बुलाया इधर आओ। तो महाराज आपने उसको सॉरी बोला, महाराज हाँ बोला। अच्छा क्या उसने माफ किया, उसने बोल तो महाराज हाँ महाराज उसने माफ किया, उसने बोला कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है। तो इतनी संवेदनशील है महाराज, है ना, कि वैष्णव अपराध ना हो जाए। ऐसे हम कई और बता सकते हैं पर एक झलक देने के लिए कि हमें तीसरी चीज यहाँ से एक भी सीखने को मिलती है कि प्रभुपाद जी सिखा रहे हैं हमें तीसरे स्कंध से कि वैष्णव अपराध से हमें कितना बचना है। इससे हमारी दृष्टि मर जाती है, हमारी आध्यात्मिक दृष्टिकोण। भागवत 11वें स्कंद में आता है यथा यथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मम, जितनी कृपा पात्र होंगे हम गुरु कृष्ण की कृपा प्राप्त करेंगे उतना सूक्ष्म वस्तु भगवत भक्ति के शिक्षाओं के सूक्ष्म वस्तु सूक्ष्म शिक्षाओं को सूक्ष्म अनुभवों को पकड़ पाएंगे, प्रगतिशील हो पाएंगे। और जितना अपराध करेंगे उतना प्रभुपाद जी कह रहे हैं हमारी दृष्टि हमारी मति मर जाएगी, भगवत भक्त साथ में होंगे उसका लाभ नहीं ले पाएंगे हम, है ना। कितने प्रसंग है इसमें, अभी समय का अभाव है। तो ये एक हमको सीखने को मिलता है, एक सीखने को और भी मिलता है कि कैसे अहंकार जिसमें मद में आ गए थे कौन, अपने नलकोर मणिगिरी प्रभु जी। तो ये बड़ा खतरनाक है। हम देख सकते हैं नहुष महाराज की कथा है, जब इंद्र जी को शापित हो गए पृथ्वी पे आ गए इंद्र जी, अपना जो उनका जेल का सेंटेंस मिला था पूरा करने के लिए, उधर ने कुर्सी खाली थी इंद्र जी की, तो नहुष महाराज के पास में आए देवता लोग की भाई देखा इनके 98 यज्ञ पूरे हो चुके हैं, इनके 2 इनको और दे देंगे तो हम दे देते हैं एक एक करके, इनको 100 यज्ञ पूरे करके शतक्रतु करके इनको इंद्र पद पे बिठा देते हैं। तो नहुष मारे बोले नहीं नहीं मैं तो योगी नहीं 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 बहुत हाथ जोड़ रहे थे प्रणाम कर रहे थे माफी में नहीं नहीं छोड़ दो मुझे। और जब गए भी तो इंद्री लोक में अलकापुरी में इतना प्रणाम करके करके एकदम बिल्कुल एकदम नम्र थे। लेकिन जैसे जैसे इंद्रलोक का ऐश्वर्य टच हुआ प्रभावित हो गए। और फिर हमको मालूम ही है कि शची देवी को भी शची माता को भी शची जो इंद्र की पत्नी है उनको भोगने के लिए भी वो सप्तऋषियों को बोले पालकी में उठा के लेकर आओ उसको मैं उसका भोग करूंगा। और फिर अगस्त ऋषि को उन्होंने जब वो धीरे धीरे पालकी चला रहे थे क्या था जो भी है भूल गया तो समझा ना तो फिर नहुष महाराज को श्राप दे दिया अगस्त ऋषि ने कि आप सर्प बोल रहे हो। हाँ उनको वो खुद जा रहे थे सप्तऋषि के द्वारा उठा करके है ना शायद तो अगस्त ऋषि को पैर से मारा उन्होंने कि जल्दी चलो। तो अगस्त ऋषि ने कहा कि तुम सर्प संस्कृत में सर्प का अर्थ होता है जल्दी चलो तो उन्होंने सर्प बोल रहे हो तुम सर्प हो जाओ। तो नहुष महाराज फिर सर्प होकर के इधर गिरे है ना। तो एक चीज मैं इसमें विचार कर रहा था कि कभी कभी हमारे जीवन में भी किसी न किसी रूप से कोई हमें प्रशंसा कर देता है। अभी हमने भक्तों के संग में बहुत सुन लिया है अहंकार नहीं नहीं अहंकार से बचना है अहंकार से बचना है अहंकार नहीं होना अहंकार नहीं होना अहंकार से बचना है। लेकिन मैं एक ऑब्जर्व किया एक देखा अपने जीवन में से भी कि केवल ये कहने से कि मैं दृढ़ रहूंगा अहंकार से प्रभावित नहीं होऊंगा मैं अहंकार नहीं होऊंगा अहंकार से बचना अहंकार सबको नाश करता है अहंकार अहंकार ये कहने से काम नहीं चलता। और नहुष महाराज उदाहरण हमारे में उसमें स्पष्ट है कितने सावधान थे अहंकार नहीं अहंकार नहीं अहंकार नहीं आना पर देखो क्या हालत हो गई उनकी। तो केवल मैं बहुत अभी अलर्ट रहूंगा बिल्कुल अहंकार में नहीं आ जाऊंगा एकदम सावधान रहूंगा कोई कुछ बोलेगा बिल्कुल बोलूंगा नहीं नहीं प्रभुपाद का आशीर्वाद है नहीं नहीं गौर कृष्ण का आशीर्वाद है गौर निताई का आशीर्वाद है नहीं 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 ये बोलने से भी नहीं चलता। अगर हम सच्चे रूप से हरि नाम के आश्रित नहीं है सावधानी पूर्वक जप नहीं कर रहे हैं हर रोज तो भौतिक चेतना से ग्रस्त व्यक्ति जब ऐश्वर्यशाली जीवन मिलेगा या प्रशंसा मिलेगा वो भौतिक चेतना से ग्रस्त व्यक्ति उससे प्रभावित नहीं हो ऐसा हो ही नहीं सकता। वो होएगा ही होएगा वो होएगा ही होएगा। और जो प्रगतिशील भक्त हैं उनको दिख जाएगा कि इसकी क्या स्थिति है सदगुरु को दिख जाएगा इसकी क्या स्थिति है वो हो ही जाएगा कितना भी बोले है ना। तो केवल नहीं 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 मैं नहीं ऐसे करने से नहीं हो जाएगा। सच्चा हरि नाम का आश्रय गीता भागवत के संदेश का आश्रय सदगुरु के आशीर्वाद का आश्रय मार्गदर्शन का आश्रय जो इसमें स्थित है सच्चे रूप से नियमित रूप से वो ही बच पाएगा। नहीं तो अहंकार से कोई प्रभाव कोई भौतिक चेतना है कैसे थोड़ी कोई ऐसे गेट थोड़ी गेट लगा दिया आगे बंद कर दिया अब नहीं आ सकता अंदर। भौतिक चेतना तो प्रभावित कर ही जाएगा अहंकार प्रभावित कर ही देगा अहंकार काम खराब कर ही देगा कैसे कर देगा वो है ना। तो ये भी हमको सीखने को मिलता है एक इस प्रसंग से कि हमने अहंकार से बच के रहना है। अभी तात्पर्य में थोड़ा दृष्टि डालते हैं तो तात्पर्य में बड़ा सुंदर प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं तो भूल गए प्रभु जी। सो तात्पर्य में प्रभुपाद जी एक विषय मुख्य कह रहे हैं कि एक शुद्ध भक्त के कृपा के बिना हम भगवान को नहीं समझ सकते या क्या है मैं भी भूल गया। हाँ भक्त का आशीर्वाद पाए बिना मनुष्य को अनुभूति नहीं हो पाती कि कृष्ण भगवान है। एक सच्चे भक्त के प्रेमी भक्त के एक सदगुरु के आशीर्वाद के बिना ये संभव नहीं है कि हम समझ पाए कृष्ण कौन है मैं कौन हूं। तो ये समझना बहुत जरूरी है। तो इसी श्लोक में फिर इसलिए अपने नलकुबर मणिग्रीव दोनों क्या कह रहे हैं कि नारद मुनि जी की कृपा से हमारा ये हो पाया। हम सातवें स्कंद में देखते हैं नौवें अध्याय में अपनी प्रार्थनाओं में बीचों बीच प्रहलाद महाराज भी अपने गुरु को स्मरण करते हुए कह रहे हैं एवं जन्म निपतितम प्रभवाहि कूपे कामाभिकाम मनुय प्रपतन प्रसंगात कृत्वात्मसात सुररशिनाम भगवद गृहीत सोहम कथम नु विसृजे तब भृत्य सेवाम। क्या कह रहे हैं प्रहलाद महाराज कि नरसिंहदेव आप कह रहे हो आपके धाम चलो लेकिन मैं उन नारद मुनि के चरणों की सेवा छोड़कर कैसे कहीं जा सकता हूँ। जिनकी कृपा से प्रपतन प्रसंगा प्रसंगा मेरा तो नरक में जा रहा था, मैं खड्डे में जा रहा था, उन्होंने कृत्वात्म सात करो मोरे आत्मसात, वो भजन भी है ना, इसे नारद मुनि ने अपने मुझे अपना आत्मसात कर लिया। इनके सूर्य ऋषि सूर्यों में ऋषि इनके चरणों की सेवा छोड़कर मैं कहाँ जा सकता हूँ। तो ये हम देख सकते हैं कि कोई भी कितने सारे महान भक्त हमको देखेंगे भागवत में, कहीं ना कहीं उनके जीवन में उन्होंने एक प्रसन्न किया है एक महान वैष्णव को। न केवल हम प्रहलाद महाराज को देख सकते हैं, ध्रुव महाराज को देख सकते हैं, मृगारी को देख सकते हैं, नारद मुनि कृपा प्राप्त हुई, रघुगण महाराज को देख सकते हैं, जड़भरत की कृपा प्राप्त हुई, प्रताप रुद्र महाराज को देखो कृपा प्राप्त हुई किसकी है, किसकी है, रामानंद राय और सार्वभौम भट्टाचार्य है ना, उनकी कृपा प्राप्त हुई, तो चैतन्य महाप्रभु का चरण प्राप्त हुआ। फिर प्रभुपाद जी को देख सकते हैं प्रकट लीला में, प्रभुपाद जी को श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की कृपा प्राप्त हुई है ना। प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं पहली बार अपने जीवन में डिबेट में हारा और मेरा दृष्टिकोण बदल दिया गुरुदेव ने, है ना। प्रभुपाद जी पहले भारत की आजादी के लिए विचार लेके चल रहे थे, प्रभुपाद जी ने और आगे बढ़े कि ये तो मनुष्य जीवन को इस बद्ध जीवन से आजादी दिलाने के लिए असली चीज है ना। फिर हम देख सकते हैं कि नारद मुनि अपने बारे में भी बता रहे हैं सातवें स्कंद के 15वें अध्याय के 73वें श्लोक में, तावदास्यमहं जज्ञे तत्रापि ब्रह्मवादिनां शुश्रूषया अनुसंगेन प्राप्तोहं ब्रह्मपुत्रताम्। हालांकि मेरा शूद्र के रूप में जन्म हुआ था एक मेड सर्वेंट के गर्भ से, लेकिन मैं वैष्णवों की सेवा में लगा, जो लोग बड़े पारंगत थे वैदिक संदेश में बड़े पारंगत थे, उसकी उनकी कृपा से मुझे इस जन्म में ब्रह्मा जी का पुत्र होने का अवसर प्राप्त हुआ है। नारद मुनि अपने बारे में भी बता रहे हैं और नारद मुनि के शिष्य भी फिर वैसे ही कृपा प्राप्त की नारद मुनि की। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है और चैतन्य महाप्रभु भी इसको उद्धृत कर रहे हैं कि भगवान के भक्तों का जब आशीर्वाद प्राप्त हो गया तब जरूर आपको कृष्ण कृपा प्राप्त हो जाएगी। मध्य लीला में भगवान कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु 11वें अध्याय में 26वें श्लोक में, प्रभु कहे तुम्हें कृष्ण भक्त प्रधान, तोमा के ये प्रीति करे से भाग्यवान। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मेरे प्रिय रामानंद राय, आप सर्वश्रेष्ठ भक्त हो भगवान कृष्ण के, इसलिए जिसको भी आप प्रेम करते हो उसको वो बहुत सौभाग्यशाली व्यक्ति है। तो माते ये तो प्रीति हई लराजर, एई गुणे कृष्ण तारे करिबे अंगीकार। क्योंकि राजा ने आपको इतना प्रेम दिखाया है, आपको इतना सेवा किया है, भगवान कृष्ण जरूर उसे स्वीकार करेंगे। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण स्वयं ही है तो वो भी श्लोकों में उद्धृत कर रहे हैं कि जो भक्त का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया, जो भक्त को प्रसन्न कर लिया, भक्त का दास बन गया, वो उसको कृष्ण जरूर स्वीकार कर लेंगे, कृष्ण को जरूर प्राप्त कर लेगा वो। तो हम देख सकते हैं इसी प्रकार से मुकुंद माला स्तोत्र में भी बड़ा सुंदर श्लोक है, राजा कुलशेखर आलवार इतने बड़े राजा, वो भी क्या कह रहे हैं, मज्जन मन फलम इदम मधु कैट भारे मत प्रार्थनीय मद अनुग्रह तद्भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य मृत्यस्य भृत्य वाम स्मर लोकनाथ। तो बहुत सुंदर श्लोक है मुकुंदमाला स्तोत्र, एकमात्र पुस्तक है जो गौड़ीय वैष्णव आचार्यों के द्वारा नहीं है, श्री वैष्णव आचार्यों के द्वारा है। प्रभुपाद जी ने उसका अनुवाद किया है पहले 6 श्लोकों का, बाद के श्लोकों का श्री सत्स्वरूप महाराज ने अनुवाद किया है। तो महाराज लिखते हैं इसके तात्पर्य में कि ये जो भृत्य भृत्य 7 बार शब्द आया है, ये ऐसे ही नहीं कि चलो एक कविता पूरी करनी थी, एक श्लोक का है ना प्रसंग पूरा करना था तो गाने में ठीक बैठ जाए मीटर में, तो भृत्य भृत्य 2-4 बार एक्स्ट्रा लगा दिया नहीं, महाराज बड़े अच्छे समझा रहे हैं तात्पर्य में कि नहीं, भक्त सच में वो जानता है कृष्ण का दास बनने से कुछ नहीं होगा, कृष्ण के दासों का दास अनु का दास। राजा कहे हमी तुम्हार दासे रनु दास, क्या है विष्णु दत्त गुरु आगे लाइन, हाँ भृत्य रे भृत्य करी यही मोर आश। प्रताप रुद्र महाराज भी कहते हैं यही बात, मुझे सेवकों का सेवकों का सेवकों का सेवकों का सेवक बनना है मुझे, तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अभी सेवकों का सेवक तो बनने के बारे में हमने कितना सुन चुके हैं, और हम तो है ही ना, हमारा नाम भी तो है निमाई निताई दास विष्णु दत्त दास, तो अभी हम तो है ही। जब भी हम ये सुनते हैं तो हम मन ही मन सोचते हैं कि मैं तो हुई और मैं तो सेवकों का सेवक दास हुई, और अच्छा बोल रहे हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, शास्त्र में बहुत अच्छा लिखा है, और मैं तो वैसे ही हूँ, मतलब ऐसे ही लगता है मन ही मन हमको, है ना। तो इसके बारे में हम देख सकते हैं कि न केवल हमने महंतों संत महंतों का दास बनना है, क्योंकि हरि का दास बनना ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप देखेंगे नए नए लोग मंदिर में आते हैं, एकदम नए लोग, बड़े सेठ भी होंगे, लेकिन फिर भी आप देखोगे 9 बजे झाड़ू लगाते हैं यहाँ पे बड़े खुशी से, और बड़े खुशी से झाड़ू लगाते हैं। देखा आपने कि भगवान का दास बनना आसान है नहीं, उसके थोड़ा दिन समझ में आता है, अच्छा ये प्रभुपाद जी हैं, ये मतलब इनको प्रसन्न करना है या फिर इनके अनुयायियों को प्रसन्न करना है, और तब गुरु के आशीर्वाद से कृष्ण प्राप्त होंगे। तो फिर हरि से गुरु, अगला और नेक्स्ट स्टेप आता है गुरु, फिर धीरे 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 शास्त्र पढ़ पढ़ के समझ में आता है, अच्छा हरि गुरु वैष्णव पे जाके गाड़ी रुकती है वैष्णव को भी प्रसन्न करना है। तो हरि और गुरु को प्रसन्न करना, क्योंकि वो तो भगवान तो मुस्कुराते ही हैं, हमको तो यही दिखता है, भगवान तो मुस्कुरा रहे हैं, हम कुछ भी गलत काम करें अच्छा काम करें, और गुरु के पास भी जाओ तो गुरु भी हमेशा मुस्कुरा कर कहते हैं बहुत अच्छा सेवा कर रहे हो, करते ही रहो, बहुत अच्छा है। वो तो उत्साहवर्धन करना चाहते हैं कि लगे रहो, लगे रहो हो जाएगा शुद्धिकरण, ना लगे रहो पक जाओगे। पर वैष्णव के संग में हमको पता लगता है सही सही, दूध का दूध पानी का पानी कि हम कितने है पानी में है, और कितने अच्छे भक्त हैं, कितने ढीलू राम भक्त हैं। नहीं तो एक हम प्रसंग देख सकते हैं बड़ा सुंदर है, ठीक है, आदि लीला के 16वें अध्याय में जब गंगा जी के तट पे केशव कश्मीरी मिलते हैं किसको, हैं नहीं निमाई पंडित को सही सही बोला है, मैं जस्ट निमाई पंडित को मिलते हैं, है ना। तो निमाई पंडित को 100 श्लोक सुनाते हैं, निमाई पंडित उसमें से एक श्लोक सुना देते हैं कि ये श्लोक का आप बताइए, तो वो तो ये मैं 2-4 श्लोक पढ़ूंगा, उसमें से फिर हम कुछ सीखेंगे, है ना, भक्तों के दास बनने के बारे में। अनुवाद ही पढ़ूंगा, समय कम है। वह ब्राह्मण केशव कश्मीरी महाप्रभु के कथन से संतुष्ट हुआ और उसने उद्धृत श्लोक का अर्थ बतलाया, उसने अर्थ बता दिया श्लोक का, बहुत खुश हुआ कि बड़ा अच्छा याद कर ले निमाई पंडित, श्रुतिधर आदमी हो। तब महाप्रभु ने कहा, कृपा इस श्लोक के कुछ विशेष गुणों और दोषों का भी व्याख्या कर दीजिए। अभी देखते हैं ब्राह्मण जी क्या कहते हैं। ब्राह्मण जी के, ब्राह्मण ने उत्तर दिया, इस श्लोक में नाम मात्र भी दोष नहीं है, प्रत्युत यह उपमा तथा अनुप्रास की उत्कृष्ट विशेषताओं से युक्त है। ये पहला उत्तर, आगे चलते हैं। महाप्रभु ने कहा, हे महाशय यदि आप रुष्ट न हो तो मैं कुछ कहूं, क्या आप इस श्लोक के दोषों की व्याख्या कर सकेंगे, इसमें संदेह नहीं है। हाँ महाप्रभु कह रहे हैं आगे, इसमें संदेह नहीं कि आपकी कविता प्रतिभा से युक्त है और निश्चय ही इसने परमेश्वर को संतुष्ट कर लिया है, फिर भी यदि हम इसकी समीक्षात्मक रूप से विवेचना करें तो इसमें गुण और दोष दोनों मिल जाएंगे। फिर महाप्रभु कह रहे हैं उनको, अभी देखते हैं आगे क्या कहते हैं महाप्रभु। आगे कह रहे हैं महाप्रभु ने अंत में कहा, अतएव अब हम इस श्लोक की भली भांति विवेचना कर लें। तब उस कवि ने उत्तर दिया, अभी देखिए, हाँ तुमने जो श्लोक पढ़ा है वह पूरी तरह सही है। फिर देख रहे हो क्या कह रहे हैं, अभी देखते हैं आगे, ये बड़ा और भी महत्वपूर्ण है। दूसरी बात बोल रहे हैं कौन, केशव कश्मीरी, आप तो व्याकरण के सामान्य विद्यार्थी हो, काव्य शास्त्र के अलंकारों के बारे में आप क्या जानो, आप इस कविता की समालोचना नहीं कर सकते क्योंकि आपको इसका कोई ज्ञान नहीं है। तो ये एक हमें प्रसंग देखने को मिलता है जिसमें एक भक्त को उसकी कमी बताई गई। अभी कोई बता सकता है कि 2 चीजें उसने क्या बोली, हाँ ओके, पहली चीज, हाँ पहला उन्होंने बोला कि नहीं मैं गलत नहीं हूं, दूसरी बार भी बोल दिया कि मैं गलत, मेरे एकदम सही है। दूसरी बात क्या बोली, जब हमको कोई गलती बताता है तो हम क्या करते हैं, पहले तो ये प्रस्तुत कर देते हैं बात में कि मेरी गलती नहीं है, मैं सही हूं। दूसरी बात, तुमको क्या अधिकार है, तुमको क्या ज्ञान है, तुम्हारी क्या योग्यता है मेरी गलती बोलने की। मतलब हम दूसरे वाले को अयोग्य कर देते हैं कि तुम योग्य ही नहीं हो मेरी गलती पकड़ने के। समझ पाए क्या मैं क्या कह रहा हूं? समझ पाए? किसी को नहीं समझ में आया? समझ पाए होंगे? तो ये दो चीज होती है हमारी चेतना में, अभी मुख से बोलें या अंदर बोलें, वो हमको देखना है। जब कोई हमारी गलती बताता है तो सबसे पहला विचार आता है नहीं मैं सही हूं, और तत्काल हम उसका उत्तर देने लगते हैं कि मैं सही हूं, मैं सही हूं, और उसका सफाई देने लगते हैं, ऐसे 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 हो गया, मैं सही हूं। और अगर वो व्यक्ति रुकता नहीं, जैसे महाप्रभु यहां रुके, निर्मय पंडित ने बोला कि इसमें गुण दोष बताइए जरा, दोबारा से बोला, तो फिर उन्होंने कि तुम ही योग्य नहीं हो, मुझे क्या कहते हैं इंस्पेक्ट, मतलब समीक्षा, समीक्षा करने के, तुम योग्य ही नहीं हो। तो दूसरा विचार मन में ये आता है कि ये भक्त को क्या मालूम, मान लीजिए आप कुकिंग कर रहे हैं किचन में, ठीक है ना, कोई आके बोलता है प्रभु जी दाल में थोड़ा सा लग रहा है नीचे लग गया, प्रभु जी है बिल्कुल ठीक है, वो ऐसे ही लग रहा है, वो थोड़ा सा क्या है, वो जो उसका राई है ना, मस्टर्ड सीड राई, वो थोड़ा सा ज्यादा जल गया है उसका, हल्का सा लग रहा है आपको, कुछ नहीं है, दाल फर्स्ट क्लास है, पहली। दूसरा हम क्या कहते हैं, प्रभु जी आपने कभी किया है क्या, आप 5-7 लोगों का प्रसाद बनाते हैं, 150 लोगों का प्रसाद बनाना आप किया है प्रभु जी, हम मालूम है, हम तो रोज का काम है प्रभु जी हमारा। समझ पाए अभी दो चीजें कैसे हमारी चेतना में आती हैं, ये दो चीजें, पहला हम ये साबित करते हैं कि मेरी गलती नहीं है, दूसरा ये कि आपको जी समझ नहीं है, आपके पास योग्यता ही नहीं है मेरी गलती निकालने की। तो स्थूल रूप से हम बोल सकते हैं हाँ हाँ मैं दास हूं, यूर हम्बल सर्वेंट, यूर इनसिग्निफिकेंट सर्वेंट, यूर इटर्नल सर्वेंट, यूर एस्पायरिंग सर्वेंट, यूर सर्वेंट ऑफ सर्वेंट, कितने प्रकार के वो ऐसे में उसमें भक्ति नीचे लिखते हैं, पता भी नहीं चलता ये कौन सा कोड लिखा है। लेकिन हम देख सकते हैं हमारे जीवन में हमारी चेतना क्या है, हम मुख से बोले ना बोले अंदर क्या चल रहा है, भगवान तो अंदर देख रहे हैं ना, जो मार्क्स देने वाला है आदमी वो तो अंदर बैठा है ना, वो तो अंदर से देख रहा है ना, नहीं तो एक चीज ये उसकी बजाय, एक बार परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज बहुत साल पहले अपने प्रवचन में प्रभुपाद जी का उदाहरण दे रहे थे कि कैसे जब वो मैगजीन छापने वाले आदमी ने प्रभुपाद जी को कहा कि स्वामी जी मैगजीन क्यों छापते हो, पुस्तक छापो, मैगजीन तो लोग पढ़ के फेंक देते हैं ना कचरे में, पुस्तक छापो, पुस्तक रहती है लाइब्रेरी में, पुस्तकालय में, सब जगह लोग रखेंगे पढ़ेंगे उनका लंबे समय तक, है ना। तो प्रभुपाद ने नहीं ऐसा कहा कि तू साधारण छपाई करने वाला जेट एज परिवराज का आचार्य सेनापति भक्ति और तू तुझे सिखाएगा, तू चल तेरा काम करे आज। ऐसा नहीं बोला प्रभुपाद जी ने, प्रभुपाद जी ने क्या बोला, तुम्हारे मुख से मेरे गुरु महाराज बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बात सिखाई तुमने मुझे, और इसलिए प्रभुपाद जी ने फिर पुस्तकें छाप के बीबीटी छाप कर पूरी दुनिया को जीत लिया, प्रभुपाद जी ने प्रचार कर दिया चैतन्य महाप्रभु का। एक छोटे से व्यक्ति से भी कुछ सुधार हो सीख सकते थे तो सीख लिया प्रभुपाद जी ने, ऐसा महाराज बता रहे थे कई साल पहले। तो ये हम कंपैरिजन देख सकते हैं, है ना, हम कैसे हैं, प्रभुपाद जी के अनुयायी कहलाना तो आसान है, जय प्रभुपाद बोलना तो आसान है, लेकिन प्रभुपाद जी एक नौसिखी एक छपाई करने वाले साधारण आदमी से भी शिक्षा ले सकते हैं प्रभुपाद जी, नहीं। दूसरा हम देख सकते हैं, ऐसे तो कई बोल सकते हैं, समय का भी अभाव है, दूसरा एक और देख सकते हैं हम कि जब अंत्य लीला के 8वें अध्याय में रामचंद्रपुरी ने निंदा करी, 44वें श्लोक से लेकर 50वें श्लोक तक आप देखेंगे, रामचंद्रपुरी ने सबके सामने निंदा करी महाप्रभु की, सन्यासियों की इतने मिठाई खाता है, क्या सन्यासी है, भोगी आदमी, ऐसे करके वो कौन बोलता है, रामचंद्रपुरी सबके सामने महाप्रभु को। तो हम नहीं देखते कि महाप्रभु वहां बहुत हल्ला कर दिया, तो ने देखो एक होता है कि बोलना कि अरे सन्यासी जी आपका कपड़ा क्या ठीक नहीं पहना है आपने, गंदा है, धुला है, धुलना चाहिए, और क्या है आप हैं, एक कमी एक होती है। दूसरा होता है सन्यासी के धर्म के बारे में, या किसी के धर्म के बारे में उसका अगर त्रुटि बोली जाए, निंदा की जाए, सन्यासी का धर्म क्या है, वैराग्य, वैराग्य विद्या निज भक्ति योग सिखाने के लिए महाप्रभु आए हैं, उसी में ही छेद कर रहे हैं कौन, रामचंद्रपुरी, कि तू वैरागी नहीं हो,
इतना मीठा खा के भोगी आदमी,
तो कितना हमें तिल मिला जाएंगे कि नहीं, हम कोई हमको हमारे जो स्वधर्म है उसमें हमको कोई निंदा करे तो उसमें गलती कर रहे हो, है ना। महापुरुष वैराग्य सिखाने के लिए आए, उसके लिए वैराग्य अवतार लिए आए, नहीं भक्ति सिखाने के लिए। उसमें ही उन्होंने ऐसे किया, महापुरुष ने क्या, हम नहीं देखते कि महापुरुष ने बहुत हल्ला कर दिया, ऐसा बोल दिया तूने सबके सामने, मेरे ऐसे कर दिया, मेरी इज्जत नहीं रहेगी, ये ओ पूरा महापुरुष ने ऊपर से लेके नीचे तक, है ना, dandavats.com में डाल दिया, इधर डाल दिया, उधर डाल दिया और घंटों बैठ करके ईमेल लिख रहे हैं अभी इन महापुरुष ईश्वरपुरी को, देखो क्या हो रहा है ये। नहीं कुछ नहीं, महापुरुष ने बोला गोविंद कल से जो है जगन्नाथ जी के जो प्रसाद लाते हो मेरे लिए, इसको एक चौथाई लेकर के आना है, बस इतना ही बस। महाप्रभु ने उसको, और वहां साफ लिखा कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने क्या लिखा है, और कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि महाप्रभु पूरा मन से आदर देते थे गुरु के समान किसको, रामचंद्रपुरी को, इस घटना के बावजूद भी पूरा आदर देते थे, कोई उन्होंने बवाल नहीं खड़ा कर दिया कि तूने मेरी, अगर किसी ने हमारी सही निंदा भी करी हो तब भी हम बवाल, मैं तो बवाल खड़ा कर दूंगी, तुम सबके सामने बोलना चाहिए, तुम्हें समझ नहीं है क्या, अकेले में साइड पे लेके बोलना चाहिए हैं तुम्हें है? ऐसे नहीं, जैसे कौन है उसको महाप्रभु साइड पे लेके बोलते हैं, वो भूल गया, मैं भूल गया मैं जो भी है, तो आपको पता नहीं कि महाप्रभु क्या सिखाते, साइड पे लेके सबके सामने बोल दिया प्रभु जी, उनकी इज्जत रह गई हमारी, ऐसा नहीं बोला महाप्रभु ने। और यहां तो गलती भी थी भी नहीं, गलती महाप्रभु की, फिर भी सबके सामने उनके स्वधर्म पे उनकी तीर मारा गया या काटा लगाया गया, महाप्रभु ने कुछ भी नहीं बोला, महाप्रभु चुपचाप स्वीकार कर लिया। और एक दूसरा उदाहरण देखते हैं, एक भक्त एक प्रवचन में बता रहे थे, 8-10 युवा के प्रवचन में बता रहे थे कि एक बार किसी मंदिर में किसी भक्त के बारे में दूसरे भक्तों ने, अधिकारी भक्तों ने परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज को एक कंप्लेंट केज किया कि महाराज ये जो भक्त है ऐसे ऐसे ये गलती कर रहा है ऐसे ऐसे ऐसे। तो फिर महाराज ने, काफी सालों से भक्ति कर रहा, सेवा कर रहा था बहुत साल, 10-20 साल से ज्यादा, तो महाराज ने उसको बुलाया, उसको बोला देखिए ऐसे ऐसा है, ऐसे ऐसे हमें सुनने में आया है ऐसे, बस महाराज इतना बोला ही था और वो भक्त इतना बवाल खड़ा करने लगा महाराज के सामने, महाराज मुझे मालूम है इन्हीं लोगों ने बोला होगा, ये ऐसे मेरे को देश करते हैं, ये ऐसे ऐसे ऐसे, मेरी गलती है ही नहीं महाराज, में कोई गलती नहीं हो रही, इतना उसने पूरा कर दिया हल्ला वहां पे। तो फिर महाराज ने उसको बोला कि ठीक है अगर आपकी गलती है ही नहीं तो फिर चिंता क्यों करते हो, इतना परेशान क्यों हो रहे हो, आपकी गलती नहीं है, चुपचाप जाके अपनी सेवा करो, जो लोग तो बोलते रहते हैं बोल रहे हैं, और अगर गलती हुई है आपसे तो आप उसको स्वीकार करके अपनी सेवा करो। एक लाइन में महाराज ने सब कुछ निपटा दिया, कितने सरलता से, कितना बवाल खड़ा करने की जरूरत ही क्या है, अगर गलती हो गई है तो स्वीकार करो, अपनी सेवा जारी करो आगे, और गलती नहीं हुई है तो प्रभावित मत हो किसी के कहने से, बस ठीक है आपने कह दिया इतना। तो हम देख सकते हैं कि हमारे जीवन में ये कहना तो आसान है कि मैं दास हूं, लेकिन महाप्रभु की प्रसन्नता के अनुसार, उनकी शिक्षाओं के अनुसार दास बनना में बहुत सारे सूक्ष्म चीजें हैं जो हमको अपने चेतना में लेना है, तब हम दास कह सकते हैं, हम दास बनने का प्रयास कर रहे हैं, दास बन सकते हैं, है ना। ठीक है, तो एक दो मिनट में और निपटा देता हूं। तो प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में एक चीज यही कह रहे हैं कि भक्तों का दास बनना है, गुरु का दास बनना है, शुद्ध भक्तों का सेवा करके उनको प्रसन्न करना है, उनको प्रसन्न कर लिया तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो ये एक हमने सबने प्रयास करना चाहिए कि महान भक्तों को, और उनमें सबसे प्रमुख हैं गुरु, उनको प्रसन्न करने के लिए प्रयास किया जाए। और हर एक भक्त, चाहे ऊपर हो नीचे हो, पदवी में हो नहीं पदवी में हो, हर एक भक्त अगर एक दूसरे को ये सहयोग करे कि आपके गुरु के आदेशों को पालन करने में जो सहायता चाहिए मैं आपको करता हूँ गुरु जी, और मेरे गुरु के आदेशों को पालन करने में जो मुझे सहायता चाहिए अगर आप करेंगे तो मुझे भी, अगर ये कल्चर हो जाए हमारा और ये बढ़ता चला जाए तो हम बहुत प्रचार कर सकते हैं, क्योंकि सबकी भक्ति सुदृढ़ हो जाएगी, गुरु के आज्ञा को पालन करके उनके हृदय में कृष्ण भावनामृत भरती चली जाएगी और हम भक्ति में आगे बहुत आगे बढ़ सकते हैं, इस कौन में बहुत प्रचार कर सकते हैं, बहुत बहुत असीमित प्रचार कर सकते हैं, अगर सब लोग इसके प्रति हम संवेदनशील हो जाएं
कि कैसे हर एक दूसरे को मदद करें, एक शुद्ध भक्त, एक प्रेमी भक्त, एक महान वैष्णव को प्रसन्न करने के लिए उनको सहयोग करें, उनको सहायता करें, उनको अगर सेल्फलेसली अगर हम ये चलें तो हम बहुत प्रगति कर सकते हैं जीवन में। हमें लगता है कि ये भक्त अगर मेरी ही सेवा में काम आएगा तब तो मेरा फायदा है, और कई बार हम ऐसा हो सकता है कि हम संवेदनशील न रहें उस भक्त को सहायता करने में, उसके गुरु के आगे उपालन करके आगे बढ़ने के लिए, और कालांतर में फिर वो भक्त कमजोर पड़ जाता है क्योंकि अपने गुरु की आज्ञा को स्मरण भी नहीं कर रहा है, पालन करने का प्रयास करना और उसमें जूझना तो बात ही नहीं है। फिर प्रभुपाद जी हम देख सकते हैं वृंदावन में बैठे थे, राधा दामोदर मंदिर में रूप गोस्वामी के दर्शन कर रहे हैं, जीव गोस्वामी के राधा दामोदर का दर्शन कर रहे हैं, सामने अपने कमरे में बैठे हुए, सबको चकाचक कन्फर्म टिकट भगवत धाम जाने की, लेकिन प्रभुपाद जी नहीं बोले कि वृंदावन में हूँ, ब्रजवास हो गया है, राधा दामोदर मंदिर मिला है जीव गोस्वामी का, ये पूरे आध्यात्मिक जगत का केंद्र बिंदु है, उसमें मंदिर के आंगन में मेरा कमरा है, और क्या चाहिए, बस अब तो कंफर्म टिकट है, भगवत धाम जाना ही होगा। नहीं, वहां बैठे बैठे प्रभुपाद जी तड़प रहे थे कि नहीं 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 नहीं, गुरु जी का आज्ञा पालन करना है, गुरु जी का आज्ञा पालन करना है, जाना है विदेश, जाना है विदेश, जाना है, और वहां छोड़ करके कहां पर जान खतरे में डाल करके गए। 70 साल के कोई वृद्ध आदमी होते हैं घर में संभल के रहते हैं ना, चलते भी धीरे धीरे हैं, कहीं स्लिप ना हो जाए, एक स्लिप हुआ कहीं हड्डी टूटी तो फिर जुड़ी तो है नहीं, अब तो गई उम्र। 70 साल का आदमी को भी देखे, दिल के दौरे पड़ रहे हैं, मालवाहक जहाज में जा रहे हैं सागर पार करके, पूरी दुनिया पार करके अमेरिका, और वहां पर 1 साल धक्के खा रहे हैं, 2 साल है, उसके बाद भी मेहनत तो की प्रभुपाद जी ने जान खतरे में डाल करके। प्रभुपाद जी को ये फंडा क्लियर था कि भाई गुरु को प्रसन्न करने में ही सारी आध्यात्मिक सफलता है, वृंदावन में जाके राधे राधे जब करने से कुछ नहीं मिलने वाला कुछ नहीं मिलने वाला, 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलने वाली वहां पे। गुरु को पसंद करेंगे चाहे विदेश में रहें चाहे किधर भी रहें, गुरु को पसंद करके उनकी आज्ञा के छत्र में, जैसे अपने गोविंद महाप्रभु ईश्वरपुरी कहते हैं जाने से पहले, भगवत धाम लौटने से पहले, गोविंद तुम जाओ श्री कृष्ण चैतन्य की सेवा करना। काशेश्वर पंडित और गोविंद निकलते हैं दोनों, चलो धाम यात्रा करते हुए तीर्थाटन करते हुए पहुंच जाएंगे, महाप्रभु की सेवा करेंगे जाकर के। आधे रास्ते में क्या गोविंद कहते हैं काशेश्वर पंडित को, तुम घूम फिर के आओ, मैं तत्काल ले जा रहा हूं, मैं तो अभी जा रहा हूं, मैं नहीं। तो कोई सोचेगा कि अरे इतने साल ईश्वरपुरी जी की सेवा कर रहे थे, है ना, तुच्छ सेवा कर रहे थे, थोड़ा घूम के आते जाते इधर उधर निकाल के आते, 4 छोर का आनंद होगा, फिर तो जाके श्री कृष्ण चैतन्य की सेवा में रहना है जिंदगी भर, तो थोड़ा कि यात्रा मार के आता हूँ जल्दी से, थोड़ा सा घुमा लाता हूँ, 1-2 महीना घूम के आऊंगा क्या है। नहीं, गोविंद ने कहा अपने गुरु के आज्ञा के छाते में मैं स्थित हो जाना चाहता हूँ, उसके बाद जो परमिशन मिले घूमने की नहीं मिले वो देखेंगे बाद में, पहले अपने गुरु की आज्ञा के छाते में मुझे स्थित हो जाना है, आश्रित हो जाना है। भागते हुए काशेश्वर पंडित को छोड़ करके श्री कृष्ण चैतन्य के चरणों में आकर के बोले कि मेरे को आप स्वीकार कर लीजिए आपकी सेवा में, गुरु जी की आज्ञा के स्थित हो जाऊंगा मैं, बस उसके बाद बाकी देखेंगे दुनिया, पहले मुझे गुरु जी की आज्ञा स्थित हो जाना है। क्षण भर भी, 1 महीने के बाद छोड़ो, क्षण भर भी मुझे गुरु जी की आज्ञा के छाते के बाहर नहीं रहना है, सबसे सुरक्षित वही स्थान है मेरे लिए। सबसे सुरक्षित स्थान एक साधक के लिए, एक भक्त के लिए, एक आध्यात्मिक, एक भक्ति योगी के लिए सबसे सुरक्षित स्थान है गुरु जी के आगे में छाता के अंदर रहे सुरक्षित, और तब हमें कृष्ण प्राप्त हो जाएंगे। और ये श्लोक और भागवत में ऐसे दर्जनों श्लोक है जो हमें ये बात को सिखा रहे हैं, प्रभुपाद जी अपने जीवन से सिखा रहे हैं। और एक जो आखिरी पॉइंट प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में बोलते हैं वो क्या बोलते हैं कि कृष्ण को भगवान समझ पाएंगे ठीक ठीक रूप से। कैसे समझ पाएंगे? जब गुरु और शास्त्र से श्रवण करेंगे हम ठीक ठीक रूप से। तो प्रभुपाद जी का यही बॉम्बे में 5 अप्रैल 1974, कल ही मैं सुन रहा था ये, जब मुझे पता चला शाम को कि ये सेवा करना है इस श्लोक पे, तो उसी में कई प्रभुपाद जी का मॉर्निंग कन्वर्सेशन सुन रहा था दिन में बैठ करके, इसी जुहू बीच पे 5 अप्रैल 1974 को प्रभुपाद जी ने बोला, तो बड़े अच्छे डॉक्टर पटेल के साथ में प्रभुपाद चर्चा कर रहे थे, मैं सारांश में बोलूंगा अभी पूरा नहीं, कि कोई आपको नींबू का जो होता है ना वो सूखा सूखा पाउडर वो ला के दे के आपको बोलेगा सोडियम क्लोराइड है तो आप मान लोगे, वो सिट्रिक एसिड है उसको आप सोडियम क्लोराइड मान लोगे? नहीं, आप उसको जांच करोगे, पड़ताल करोगे तब मानोगे उसको। प्रभुपाद जी कहते हैं उसी प्रकार से कोई भी कुछ भी बोले उसको आप अवतार नहीं मान सकते। प्रभुपाद जी फिर कह रहे हैं कल के अवतार के बारे में कि कैसे 4 लाख साल बाद आएगा, संबल नामक स्थान में आएगा, विष्णु जशा या विष्णु जोशी बोलते हैं रूपाली शब्द, विष्णु जोशी नाम का व्यक्ति का बेटा होगा जो कल्कि अवतार भगवान कृष्ण के अवतार प्रकट होंगे, तो वैसे हम समझते हैं शास्त्रों के द्वारा। फिर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भागवत में चाहे 4,00,000 साल बाद आने वाले कल्कि अवतार के बारे में विवरण मिल जाएगा शास्त्रों में, या 2,500 साल पहले आए बुद्ध के बारे में भी आपको वर्णन मिल जाएगा भागवत में कि ये भी भगवान के अवतार हैं। तो भगवान के अवतार वैसे ही कोई बोल दे, बड़ा बड़ा बैनर लगा दे, उससे कोई अवतार बन जाता है क्या? नहीं, शास्त्रों से पता लगता है कि कौन असली अवतार है भगवान का, उनके लीलाओं के बारे में, कर्मों के बारे में, जन्म के बारे में, उनके आविर्भाव के या प्रकट्य के बारे में बताया होता है। प्रभुपाद जी समझा रहे हैं अपनी इस चर्चा में। फिर प्रभुपाद जी बता रहे हैं, देखिए अर्जुन कैसे कृष्ण को स्वीकार कर रहे हैं, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भगवान, है ना, कि अर्जुन बता रहे हैं देवो असितो, है ना, कितने सारे ऋषियों मुनियों का बता रहे हैं कि अर्जुन ने कह रहे क्योंकि मेरे दोस्त हो इसलिए तुम भगवान हो। नहीं, ये साधु गुरु शास्त्र लोग कह रहे हैं कि आप भगवान हो इसलिए मैं आपको भगवान स्वीकार करता हूं पूरी पूरी रूप से। और यही विधि है, आप देखोगे चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में सार्वभौम भट्टाचार्य 11वें अध्याय में शायद सार्वभौम भट्टाचार्य बताते हैं किसको, प्रताप रुद्र महाराज को। प्रताप रुद्र महाराज पूछते हैं कि अरे मैंने सुना आपके घर में बंगाल से कोई बहुत पहुंचा हस्ती आया है, बहुत महादयालु है वो, मुझे दर्शन नहीं करवा रहे हो। वो बोले वो तो चले गए। अरे रोका क्यों नहीं, चरण पकड़ के रोक लेना चाहिए तुमने। नहीं, अरे वो स्वतंत्र ईश्वर है, वो तो परम भगवान है, कौन रोक सकता है उनको। तो 3 बार बताते हैं उनको सार्वभौम भट्टाचार्य श्लोकों में कि ये तो परम भगवान है। तब फिर प्रताप रुद्र महाराज कहते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, मैं तो हाँ क्या कहते हैं प्रताप रुद्र महाराज, राजा कहे भट्ट तुम्हें विज्ञ शिरोमणि तुम्हें तारे कृष्ण कह ताते सत्य मानी। हे राजा ने कहा हे भट्टाचार्य, आप सबसे बड़े विद्वान पंडित है ना, साधु हो और शास्त्रों में पारंगत हो, इसलिए जब आप श्री कृष्ण चैतन्य को भगवान कृष्ण के रूप में कहते हो तो मैं इसको स्वीकार कर लेता हूं। तो ये है राजा सिखा रहे हैं हमको, राजा प्रताप रुद्र, की कैसे किसी को भगवान स्वीकार किया जाता है। जब साधु गुरु शास्त्र किसी को कहते हैं कि ये भगवान है, अर्जुन जी सिखा रहे हैं हमको, प्रभुपाद जी सिखा रहे हैं हमको कि किसको भगवान स्वीकार करना, ऐसे किसी को नहीं स्वीकार कर लेना भगवान। और कौन गुरु, कितने सारे गुरु हैं दाढ़ी बढ़ाकर घूम रहे हैं, सारे गुरु कोई वो किसी को भगवान बोलेंगे वो भगवान मान लेंगे हम? नहीं, उनके गुणों से पता लगता है कि ये क्वालिफाइड है, असली संत हैं। जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी के आप देख लीजिए चैतन्य चरितामृत में 100वें श्लोक मिल जाएंगे, 1, 2, 3 फॉर्मेलिटी के लिए नहीं लिखे उन्होंने, 100वें श्लोक लिखे जहां में उन्होंने ये स्थापित किया बार बार कि वृंदावन दास ठाकुर ने असली चैतन्य लीला वर्णन किया है, मैं तो झूठा कुछ रह गया है उसको चख रहा हूं, बस उनका झूठा खा रहा हूं मैं तो। 1-2 श्लोक नहीं है, 100वें श्लोक है पूरे चैतन्य चरितामृत में। ऐसे सेल्फलेस, कोई नेम फेम न चाहने वाले संतों जब कहते हैं तब हम समझ सकते हैं कि ये भगवान है। उसी प्रकार से प्रभुपाद जी भागवतों के प्रथम स्कंद में तात्पर्य में लिखते हैं कि भागवत के ऊपर यही टीका नहीं है, पूर्ववर्ती आचार्यों ने ये आचार्यों ने टीका लिखी है, और पाठक के लिए अच्छा रहेगा अगर उनकी शिक्षाओं को पढ़े जाकर के। वो कहां लिखा है ये प्रभुपाद ने, पहले स्कंद में लिख दिया है। तो प्रभुपाद जी देख सकते हैं कितने नेम फेम नहीं चाहिए प्रभुपाद जी को। कोई लिखेगा ऐसा लेखक कि मेरी पुस्तक वो पढ़ो जाकर के? ऐसे सच्चे संत ऋषि महात्मा है हमारी गौड़ीय परंपरा में, जब वो कहते हैं और शास्त्र कहते हैं तब हम समझ सकते हैं कि ये भगवान है, नहीं तो हम क्या समझेंगे, अज्ञ मूर्ख। तो भगवान को समझने के लिए हमने इस प्रकार से सच्चे संतों के द्वारा उनको योग्यता प्राप्त है बताने के लिए कौन भगवान है, और शास्त्र से हम देख सकते हैं कौन भगवान है। भगवान चैतन्य महाप्रभु भी सनातन गोस्वामी को शिक्षा में बोलते हैं, अपने सनातन शिक्षा में चैतन्य चरितामृत में, अवतार नहीं कहे मुई अवतार मुनि सब जाने करे लक्षण विचार। ये सनातन गोस्वामी अवतार नहीं कहता कि मैं अवतार हूं, जो मुनि लोग हैं साधु गुरु लोग हैं वो शास्त्रों से लक्षण विचार करके बताते हैं कि ये अवतार है भगवान का। वैसे नीलांबर चक्रवर्ती भी बोलते चैतन्य महाप्रभु के बारे में, उनके सारे जो 32 लक्षण देख करके कि भैया ये तो स्वयं भगवान है, शास्त्रों से लक्षण विचार करके बताया जाता है कि ये भगवान है। तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि जब हम शुद्ध भक्तों के आशीर्वाद प्राप्त कर लेंगे तब ठीक ठीक हमारा संबंध ज्ञान राधा राज बिहारी के चरणों में हम समझ पाएंगे और उनको प्रसन्न कर लेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। जैसे कि सुरभि प्रभु जी जिन्होंने इस मंदिर का आर्किटेक्चर बनाया, वृंदावन मंदिर का भी बनाया। वृंदावन मंदिर आई थिंक 23 अप्रैल 1975 को रामनवमी के दिन उद्घाटन हुआ था, 22 अप्रैल वृंदावन मंदिर का आर्किटेक्ट जिसने बनाया मंदिर कल खुलने वाला है, सब लोग आके बोलने वाले हैं क्या अद्भुत मंदिर बनाया, क्या सुंदर इसका निर्माण किया, आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर कितना बढ़िया बनाया, वाह वाह वाह। अगले दिन सब बोलने वाले आकर के 22 अप्रैल को प्रभुपाद जी कह रहे हैं रात को सुरभि महाराज को, सुरभि तुम जुहू जाओ। हाँ प्रभुपाद जरूर, जैसे आपकी आज्ञा, कल हम उत्सव के बाद तत्काल निकल जाएंगे। नहीं अभी जाओ, कल उत्सव है, इतना बढ़िया मंदिर का उत्सव फाइनली हो रहा है रुक रुक करके। नहीं नहीं बहुत जरूरी है, जुहू में मंदिर का जल्दी काम करना है, तुम अभी जाओ। और उन्होंने स्वीकार कर लिया जो गुरुजी की आज्ञा, और सुरभि महाराज आ गए जुहू, और उन्होंने आर्किटेक्चर बनवाया। आपको सारा पता ही है, अभी तो पुस्तक भी छप गई, इतना महानदेव भी ग्रंथ छप गया। और बाद में फिर किसी कारणवश प्रभुपाद जी के भगवत धाम लौटने के बाद सुरभि महाराज अपने भौतिक जीवन के जो बिजनेस वगैरह में लग गए थोड़ा, और 30 साल बाद अपने बिजनेस पार्टनर के साथ में किसी आर्किटेक्चर के प्रोडक्ट आर्किटेक्चर के प्रोजेक्ट के ऊपर भारत में आए थे अपने बिजनेस पार्टनर के साथ में, दिल्ली आए थे वगैरह कुछ। तो उनको याद आया कि पुराने इस्कॉन के दिन पास में ही वृंदावन मंदिर है जो मैंने ही बनाया था, चलो दर्शन भी कर लेते कृष्ण बलराम का। तो बिजनेस पार्टनर को लेकर के वृंदावन आए, और वाकई स्वास्थ्य खराब हो गया, पता लगा उनको 4th स्टेज लीवर कैंसर है, 4th स्टेज लास्ट स्टेज लीवर कैंसर है। और जिस दिन पता लगा, एक दिन छोड़ करके उनका देह त्याग हो गया। कहाँ पे? कृष्ण बलराम के मंदिर में, वृंदावन धाम में, भक्तों के कीर्तन करते हुए, भगवान की माला अर्पण प्रसाद प्राप्त करते हुए। हाँ, सही प्रभु धन्य जेना छाड़े निजे जन, सही भक्त धन्य जेना छाड़े प्रभु चरण। हाँ, तो वो भगवान धन्य है, कृष्ण बलराम धन्य है जो अपने भक्त की गई सच्ची सेवा और गुरु को प्रसन्न की गई, गुरु के आज्ञा के अनुसार चला हुआ जीवन जिया हुआ जीवन, चाहे वो 30 साल किधर भी घूमते रहे, कृष्ण बलराम को पता है ये मेरा सेवक है, इसको कृपा करना है, बराबर टाइम पे बराबर अपने चरणों में ला करके भक्तों के संग में महाप्रसाद फूलमाला कीर्तन वृंदावन धाम ब्रजवास हो गया। और भगवान के भक्तों के संग में कीर्तन के बीच में उन्होंने अपना अभी कुछ साल पहले ही देह त्याग किया सुरभि प्रभु जी ने। तो इस प्रकार से जो भक्त भगवान के शुद्ध भक्तों को प्रसन्न करते हुए उनके चरण धूलि पद धूलि अपने सिर पे स्वीकार करते हुए चलेगा, निश्चित रूप से बाह्य रूप से दिखे ना दिखे, निश्चित रूप से उसको श्री चैतन्य महाप्रभु का चरण कमल प्राप्त हो जाएगा। श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्री गौरंग महाप्रभु की, श्री नित्यानंद प्रभु की, राय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो आज हमने चर्चा किया 3 बात, पहला इस प्रसंग से कुछ शिक्षाएं, दूसरा शुद्ध भक्त को प्रसन्न करना महत्वपूर्ण है, और तीसरा भगवान जानने के लिए हमें शुद्ध भक्त ही बताएंगे, और साधु गुरु शास्त्र के आश्रय से हम समझ पाएंगे कि भगवान कौन है। तो आप सब भक्तों के चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना धैर्य से श्रवण किया, और कुछ त्रुटि हुई तो उसके लिए अपराध हुआ तो क्षमा चाहता हूँ आपके चरणों में। आप आशीर्वाद देंगे कि हम भी ये शिक्षाओं को पालन करने का प्रयास करेंगे। समय तो हो गया है, तो ऐसा करेंगे प्रश्न किसी का है तो फिर हम इधर ही आप पूछ सकते हैं। अभी हम मेरा प्रभु जी का प्रश्न है, प्रभु जी ने आज्ञा दिया है, तो प्रभु जी आप कुछ, आप तो दृष्टि डालिए कुछ, हम महाराज आप कुछ आशीर्वाद देना चाहते हैं, आप कुछ आप सुधार बताइए प्रभु जी, प्रश्न को क्या।
अरे बहुत बहुत सुंदर व्याख्या किया प्रभु जी आपने, और प्रश्न तो बहुत सारे उठते जा रहे थे। अभी समय नहीं है तो एक, क्योंकि आपने लास्ट में जो सुरभि प्रभु का बताया उस पर एक प्रश्न उठता है कि हम शास्त्रों में भी ऐसी घटनाएं देखते हैं जहाँ पे किसी ने गुरु को प्रसन्न कर लिया है, भगवान ने उस भक्त को रिकॉग्नाइज कर लिया, लेकिन उसके बाद किसी कारणवश वो भक्त गुरु और कृष्ण से बाह्य रूप से दूर हो जाता है। हमने इसको में भी बहुत भक्त देखे, और बढ़िया एक चमत्कार है कि कैसे भगवान एक एक करके सबको वापस ला रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी आशा की बात है। इसका मतलब ये नहीं कि हम घूमने चले जाएं बाहर, बट भगवान दयालु है कृपालु है रखेंगे। लेकिन कई बार जैसे मेरी बद्धत अवस्था के कारण जो भक्त गुरु को प्रसन्न कर लिया है, गुरु जानते हैं लेकिन बाह्य रूप से वो कुछ गलत काम करता है, तो मैं उसमें दोष निकालता हूँ, तो उस चीज को कैसे मैं कम कर सकता हूँ?
हाँ, बहुत प्रैक्टिकल प्रश्न है प्रभु जी का कि बाह्य दृष्टि से कोई व्यक्ति कैसा व्यवहार कर रहा है हम नहीं समझ सकते,
पर वो ऐसा हो सकता है कि उसने सदगुरु को प्रसन्न किया है, गुरुजन को प्रसन्न किया है। तो हम बाह्य दृष्टि से किसी को देखेंगे कोई गलत काम कर रहा है, पर हम नहीं जानते कि वो गुरु को बहुत प्रसन्न किया है और गुरु को प्रसन्न करके ही चल रहा है। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो जो दूसरे देखने वाले भक्त हैं, उन्होंने कभी भी इस मापदंड से किसी को भी जज नहीं करना चाहिए कि इसने मुझे दूसरा गुलाब जामुन दिया तो अच्छा भक्त, दूसरा गुलाब जामुन नहीं दिया तो बुरा भक्त है ना। तो ये किसी भी मेरा लाभ हुआ, मेरा सम्मान हुआ कि नहीं हुआ, इसके मापदंड से हमने कभी देखना नहीं चाहिए कि कौन अच्छा भक्त है कौन नहीं। किसी को भी अगर देखना है तो शास्त्र सिखाता है कि वो अपने गुरुजनों को कितना प्रसन्न कर पा रहा है सच्चे रूप से, वो मापदंड है। पहली बात तो ये जो देख रहे हैं ऐसे भक्त को, और जो भक्त खुद है ऐसा, उसका व्यवहार रहना चाहिए कि ये नहीं सोचे वो कि मैंने गुरु को प्रसन्न कर लिया है, बाकी लोग जाए भाड़ में, बाकी लोग प्रसन्न हो ना हो उनसे कुछ लेना देना नहीं है। नहीं, उसका व्यवहार रहना चाहिए मुझे हर भक्त को प्रसन्न करना है, क्योंकि एक भी भक्त का आशीर्वाद रह गया तो भगवत धाम नहीं प्राप्त होगा। हर भक्त को मुझे अपनी पूरी ताकत लगा देनी है प्रसन्न करने के लिए। मैं भूल गया चैतन्य चरितामृत में ये हाँ देवकीनंदन ठाकुर, देवकीनंदन ठाकुर का भजन कौन सा शुरू कैसे होता है, वृंदावन वासी यत वैष्णवेर गण, वो कह रहे हैं पिछले भक्त छोड़ दो, आगे भी आने वाले भक्त हैं, छोटा बड़ा सवार चरण, छोटे भक्त बड़े भक्त सबके चरणों की धूलि नहीं मिलेगी जब तक मेरे को चैतन्य महाप्रभु चरण प्राप्त नहीं होगा, गौर चरण प्राप्त नहीं होगा मेरे को जब तक, सबके चरण धूलि नहीं मिलेगी जब तक। ये है अधक का खुद का व्यवहार, खुद का विचार। जब अपने बारे में बात आ गई, जब दूसरों को देखने के बारे में बात आ गई, तो फिर हमने गुरु को प्रसन्न कर पा रहा है कि नहीं वो भी नहीं देखना, हमने ये देखना है कि कुछ भी थोड़ा सा भी ये कर रहा है क्या कृष्ण के लिए, प्रसन्नता के लिए कुछ सेवा, कुछ थोड़ा सा भी, चाहे गुरु भी पूरे नाराज हो इसके, पूरे नाराज हो गुरु से। हमारी स्थिति कैसी है कि अभी हमको पता लग गया ना गुरु को, इससे डांट, इसको डांट पड़ी गुरु से, ए छड़े इसकी तो बात सुननी नहीं है, अभी ये बोलेगा कि प्रभु जी दो गुलाब जामुन मत लीजिए, एक लीजिए, चल तू, तेरे को तो गुरु ने डांटा सबके सामने, तेरे तो रिजेक्टेड भक्त है। नहीं, भक्त ये देखता है कि इसमें एक कण मात्र भी कुछ है क्या इसमें, जो गुरु कृष्ण की, प्रभुपाद की मिशन की, चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन की सेवा में कहीं एक एक कण भी कहीं कुछ कर रहा है क्या ये, बस फिर तो उसके चरण धूलि हमारे सिर पे है ना। क्योंकि हमारे ये चैतन्य महाप्रभु की आखिरी शिक्षाओं में से फाइनल ये शिक्षा है कि वो जो चैतन्य चरितामृत आखिरी अध्याय में, कि वो जो पत्नी होती है वो कहती है अगर ये वेश्या मेरे पति को ज्यादा प्रसन्न कर सकती है तो मैं इस वेश्या की नौकरी करने के लिए तैयार हूं, अगर ये मेरे पति को प्रसन्न कर सकती है। क्यों? क्योंकि मुझे अपने पति से उतना प्रेम है। उसी प्रकार से एक साधक को गुरु से, प्रभुपाद से, नित्याई गौर सुंदर से इतना प्रेम होना चाहिए कि इनकी प्रसन्नता के लिए अगर कोई गलत आदमी भी, उसका भी कुछ है ना जूता साफ करना पड़े चलेगा, अगर इनका काम हो जाए, क्योंकि मुझे इनसे प्रेम है। किन से? गुरु नित्याई गौर प्रभुपाद से प्रेम है। तो ये हमारा भक्त रहना चाहिए, विचार रहना चाहिए दूसरों को देखने के प्रति, और अपने बारे में ऐसे हमारा विचार रहना चाहिए जैसे हमारे आचार्य लोग सिखा रहे हैं, प्रभुपाद जी सिखा रहे हैं कि सबको प्रसन्न करने का पूरा पूरा प्रयास करना है। हमने पूरा प्रयास करना है कि हम सबको प्रसन्न कर पाएं, पर फिर हमारी सीमा भी सीमित है। फिर उसमें क्या होगा अगर हम नियमित रूप से प्रयास, हमारा यही है कि सबको प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें न जाते हुए न चाहते हुए कहीं कदा कोई रह भी गया तो जनरल हमारे व्यवहार को देख करके वो एडजस्ट कर लेगा, भक्त बुरा नहीं मानेगा, वो समझ जाएगा कि उसकी भी लिमिट है, अभी वो भी थक गया था, उसने थोड़ा बोल दिया। पर जनरली वो देखता है कि आप हमेशा, हम हमेशा सबको प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं अपनी तरफ से, फिर वो भी बुरा नहीं मानता, एडजस्ट कर लेता है वो मूड। कहीं है चैतन्य चरितामृत में, अभी दिमाग से निकल गया प्रभु जी, क्षमा कीजिए। बहुत धन्यवाद आपका प्रश्न का। ठीक है, श्री प्रभुपाद की, श्री गौरंग महाप्रभु की, निताय गौर प्रेमानंदे, श्री गौरंग महाप्रभु की, श्री नित्यानंद प्रभु की। तो कल जो श्लोक आएगा वो बड़ा महत्वपूर्ण एम्परर वर्स कह लो इस चैप्टर का है, वो श्लोक मेरा श्लोक था जो कल का श्लोक है, पर वो विष्णु स्वरूप प्रभु जी को पिछला श्लोक चला गया एक, तो ये 3700 मेरे को आ गया, क्योंकि जो अगला श्लोक है कल का, तो परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज ने उस श्लोक के ऊपर में दर्जनों प्रवचन दिए है और दर्जनों प्रवचनों में उसको उद्धृत किया है। तो महाराज का सर्वप्रिय श्लोकों में से एक वो श्लोक है जो कल आने वाला है। तो कल कौन भक्त, तो कल महाराज क्लास देने वाले हैं इसी श्लोक के ऊपर, हरि बोल। तो भगवान की ऐसी लीला होगी है कि ये ऐसी सेटिंग कर दिया कि महाराज के पास में वो श्लोक आ रहा है, कल महाराज इस पे आपको सुंदर प्रवचन देंगे चैतन्य महाप्रभु।